नमस्कार दोस्तों, रात के एक बज रहे हैं और इस वक्त मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रूबरू रोशनी, आज ही मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि आपसे बातचीत की जाए। ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसे आमिर खान और किरण राव, जो आमिर खान की पत्नी हैं, आमिर खान के प्रोडक्शन से ये शॉर्ट फिल्म बनी है और बहुत ज़रूरी शॉर्ट फिल्म है जिसे इस वक्त, खास तौर से इस वक्त देखना चाहिए। बेसिकली इस शॉर्ट फिल्म में तीन कहानियां हैं। मैं शॉर्ट फिल्म कह रहा हूं, अगर आप इसे डॉक्यूमेंट्री समझे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट फिल्म की बजाय ये एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर ज्यादा बेहतर नज़र आती है। तो इस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली तीन कहानियां हैं और तीनों कहानियों की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तीनों कहानियों में संवाद नहीं है, तीनों कहानियों के लिए म्यूज़िक नहीं है। तो ये जो फिल्मों का, हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं पारंपरिक तौर पर, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, ये उसके ढांचे से, उसके दायरे से बिल्कुल अलग है। और मेरा ये मानना है कि ये समीक्षा, क्रिटिक यानी रेटिंग और क्रिटिक दोनों चीज़ों से ये बाहर की चीज़ है। इसे कोई अंक नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये बेशकीमती है, और बेशकीमती इस लिहाज से है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी कहानियां हैं जिसे हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। ये कहानी बेसिकली इस शॉर्ट फिल्म को निर्देशित किया है स्वाति चक्रवर्ती ने, और जिसका निर्माण आमिर खान के प्रोडक्शन ने किया है। इसमें तीन कहानियां हैं। हम आपको बता दें कि तीन दशक की यात्राएं हैं जो 1983-84 से शुरू होकर के 2009 तक आती हैं। पहली कहानी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर, जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान वहां पर जो कार्रवाई हुई थी स्वर्ण मंदिर पर, पहली कहानी वहां से शुरू होती है। और पूरी जो शॉर्ट फिल्म है वो 1 घंटे 50 मिनट से ज़्यादा है, जिसका प्रीमियर रिपब्लिक डे पर स्टार प्लस और हॉट स्टार पर किया गया था। तो पहली कहानी शुरू होती है 1984 के दंगों को लेकर के शुरू होती है, और हमको देखने को मिलता है कि दिल्ली के एक सांसद हैं माकन जी, उनकी हत्या कर दी जाती है उनके घर पर, उनकी पत्नी भी उस हादसे का शिकार होती हैं, और कुकी जो बहुत ही पढ़ा लिखा हायर एजुकेटेड एक युवक है, उसने 84 के दंगों में जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट होती है, और फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में जिन लोगों को उन दंगों की वजह बताया जाता है उसमें माखन जी का भी एक नाम रहता है, और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो लड़का दिल्ली में घूमता है और घूम टहल करके उसकी जो अपनी एक समझ बनती है, उस समझ के आधार पर वो लोग कुछ चिन्हित करते हैं, उन लोगों को चिन्हित करते हैं जो सिखों के खिलाफ हिंसा जो हुई रहती है अमृतसर हादसे, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हादसे और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ जो हिंसा रहती है उसके बदले के तौर पर वो कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई में माकन को एक आसान लक्ष्य माना जाता है और माकन की हत्या की जाती है। इस हत्याकांड में उनके साथ उनकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। तो कुकी नाम है, कुकी और उसके दो साथियों को आइडेंटिफाई किया जाता है उस हादसे में। बहरहाल दूसरी कहानी 1995 के समय में आपने शायद सुना होगा, एक नन थी जिनका नाम रानी था, वो केरला की थी, बेसिकली वो केरला की थी और मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी इलाके में काम करती थी। उन्हें चाकुओं से गोद करके मार दिया गया था 1995 के दौर में। और उसमें जो विक्टिम पकड़ाए गए थे उसमें से एक था समंदर सिंह उनमें से एक आरोपी था। तीसरी कहानी मुंबई में जो आतंकी हमले हुए थे जिसमें कसाब को फांसी दी गई थी, तीसरी कहानी वो है। तो बेसिकली तीन कहानियां हैं, और ये तीन कहानियां क्या हैं, कैसे कहानी बताई गई है और क्या निष्कर्ष है वो मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन कहानियां क्या हैं, उन्हें कैसे बताया गया है, ये समीक्षा से परे की चीज़ है। इसके लिए आपको जा करके ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्री की शैली में बनाई गई एक फिल्म है। तो इसके जो अपने प्रभाव हैं वो जब आप उस कहानी को देखेंगे तो आपको ज़्यादा असरदार, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा संवेदनशील नज़र आएंगे। साफ करना चाहेंगे कि ये मनोरंजक कहानी नहीं है। अगर आप मनोरंजन की दृष्टि से इसको देखने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कोई मसाला नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए ज़रूरी कहानी है। तो आप पहले देखिए कि इस कहानी में क्या क्या है। एक चीज जो बतानी चाहिए कि इस कहानी का जो मकसद है इस वो बहुत ही साफ है। इस कहानी में अपराधी हैं, लेकिन जो अपराधी हैं वो गुनहगार हैं, लेकिन प्रवृत्ति से वो अपराधी नहीं है। उन्होंने गुनाह जरूर किया है, लेकिन उनके गुनाह के पीछे की अपनी कहानियां हैं। एक दूसरा सिरा है जो गुनाह है, जिन्होंने अपराध किया है उनके गुनाह से जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है वो है, और दोनों की अपनी एक समझ है एक दूसरे को लेकर के। बहरहाल कहानी बेसिकली अपराध और क्षमा पर आधारित है, मतलब एक अपराध करने वाला है और एक क्षमा देने वाला है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, कुकी की बात कर रहा था, जो एक सिख था, एक पढ़ा लिखा सिख था और युवा सिख था, और उसने तमाम चीज़ों को देख करके और उसके आवेश में बह करके जो काम किया, जो वारदात की, जिसका खामियाजा एक 6 साल की बच्ची, उस वक्त माकन जो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे दिल्ली में, उनकी बेटी थी अवंतिका, उसका नाम है, उसको भुगतना पड़ा। अवंतिका की एक अपनी अप्रोच है और कुकी का एक अपना सिद्धांत है। कुकी भाग जाता है उस वारदात को करने के बाद, अमेरिका चला जाता है और अमेरिका में पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, 14 साल अमेरिका की जेल में गुजारता है। उसके बाद उसका भारत में प्रत्यर्पण होता है और भारत में भी उसे तिहाड़ में भेजा जाता है। बहरहाल ये कहानी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। अवंतिका के नाना आपको याद होगा, शंकर दयाल शर्मा का नाम, जो भारत के राष्ट्रपति थे, वो अवंतिका के नाना है। तो 6 साल की अवंतिका रहती है जब उसके साथ ये हादसा होता है, और उसके बाद आप जब इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, और इंटरव्यूज़ हैं इसमें, बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री को इंटरव्यूज़ के हवाले से बुना गया है। इसमें कोई स्क्रिप्ट, कोई पटकथा, कोई कहानी, कोई संवाद उस तरह से नहीं है जैसे आमतौर पर नाटकीय डॉक्यूमेंट्रीज़ में और फिल्मों में देखने को मिलता है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, ये शॉर्ट फिल्म जो कहा जा रहा है उसे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें इंटरव्यूज के सहारे पूरी कहानी को बताने की कोशिश की गई, और मुझे लगता है कि बहुत ही प्रायोगिक और बहुत ही अलग तरह का प्रयोग है हिंदी में। तो जो इंटरव्यूज हैं अवंतिका के, कुकी के, या दूसरा केस जो मैं आपको मध्य प्रदेश का बता रहा था, रानी के करीबी लोगों के और उनके परिवार के, समंदर सिंह के जो हत्यारा है जिसने चाकुओं से गोद करके नन की हत्या की थी। तो जब आप उन इंटरव्यूज से हो करके गुजरते हैं, उनके संवादों से हो करके गुजरते हैं, तो आप कहानी के जो समय हैं आप उनके साथ गुजरते हैं, उनके जवाबों के साथ गुजरते हैं, और उनके जवाबों के साथ कहानी आगे बढ़ती है और आपको चीज़ें साफ होती नज़र आती हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। बहरहाल मैं यहाँ पर निष्कर्ष नहीं बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहिए जो करीब 1 घंटे 50 मिनट या उससे कुछ ज़्यादा है, आपको देखना चाहिए। देखना क्यों चाहिए? देखना इसलिए चाहिए कि पिछले 3 दशक के दौरान जिस तरह से देश में तमाम चीज़ों को लेकर के राजनीति, तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से समाज में एक नई सोच और एक नए सिद्धांत की स्थापना हुई और एक नए तरह से चीज़ों को व्याख्या करने की कोशिश की गई, आपको वो जो प्रचलित धारणाएं हैं उनसे एक अलग अप्रोच मिलेगी। अप्रोच अलग इस लिहाज से कि जो विक्टिम हैं और जो कल्प्रिट हैं, जो अपराधी हैं और माफ़ करिएगा वो आदतन अपराधी नहीं हैं, तो जो कल्प्रिट और जो विक्टिम हैं उनके अपने पाठ आपको सोचने पर और उन पहलुओं को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करते हैं, और उनका जो निष्कर्ष निकलता है मुझे लगता है कि उस तरह का निष्कर्ष हमारे आपके या ज़्यादातर लोगों के वश की बात नहीं है। आमतौर पर इस तरह से निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। क्षमा अपराध के मुकाबले, अपराध करना बहुत आसान है लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो क्षमा बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री, आप शॉर्ट फिल्म जो भी कह लें, इसमें जिस तरह के अपराधों को लेकर जिस तरह से क्षमा को दिखाया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे आपके या ज़्यादातर लोगों के वश की बात है। तो जब इस डॉक्यूमेंट्री को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बहुत ही अद्भुत किस्म के केस हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ये क्यों ज़रूरी है, इस डॉक्यूमेंट्री, इस शॉर्ट फिल्म को देखना क्यों ज़रूरी है, तो वो इसलिए कि पिछले 3 से 4 साल के दौरान में हमारे 4 साल या यूं कह लें कि पिछले 2 से 3 दशक के दौरान में हमारे देश में जिस तरह से जाति धर्म को लेकर के, जिस तरह से चीज़ों को लेकर के एक समाज में विवाद, एक समाज में जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ घृणा और नफरत और हिंसा का स्तर बढ़ा है, जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में सड़कों पर हमने हिंसा देखी है, जो एक नया टर्म आया है मॉब लिंचिंग का, उसके लिहाज से ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जिस वक्त अपराध करते हैं और जिन चीज़ों के वशीभूत होकर के अपराध करते हैं, जिन चीज़ों से आप प्रभावित होकर के अपराध करते हैं, उनके निष्कर्ष, उनके अंजाम और उनके पीछे की क्या कहानियां हो सकती हैं, वो रूबरू रोशनी में आप पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस कहानी को आज के दौर में सभी लोगों को देखनी चाहिए और हर उम्र के लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी का मकसद, अगर एक वाक्य में कहें तो इस कहानी का मकसद मुझे लगता है कि रेवेन्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कहानियों से आप राजस्व कमाने की, पैसे कमाने की, कारोबार करने की आप सोच नहीं सकते हैं। इस कहानी का मकसद मनोरंजन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मनोरंजन के जो दूसरे पैमाने होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस कहानी का एक मकसद जो साफ नज़र आता है कि आपको सचेत करना, जो घटनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनके तमाम पहलुओं से आपको सचेत करना है, और चीज़ें किस कदर होती हैं, चीज़ों को लेकर के आपका नज़रिया, या आप जो चीज़ें नहीं सोचते हैं उसके पीछे का नज़रिया क्या हो सकता है, उसके लिए ये कहानी हर आदमी को देखनी चाहिए। हर भाषा, हर जाति, हर लिंग को ये कहानियाँ देखनी चाहिए। हालांकि ये जो शॉर्ट फिल्म है, इसके अगर ड्रॉबैक की बात करें, हालांकि इसमें किसी तरह के नाटकीय दृश्यों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री जो रियल विजुअल हैं उनके सहारे आगे बढ़ती है, और इसमें जो किरदार हैं, इसमें जो पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं और उनके करीबी हैं, उनके संवादों और उनसे बातचीत और उनके इंटरव्यू पर आधारित है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नाटकीयपन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उनके संवादों को और सवालों पर उनके जवाब को सुनते हैं तो आपको अंदर तक झकझोर देते हैं और आपको उन सवालों के जवाब के करीब लेकर के जाते हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं मिलेंगे नहीं। सबसे अहम बात अगर करें तो रूबरू रोशनी, मतलब ये कमाल की फिल्म है, और सत्यमेव जयते के बाद आमिर खान को एक अलग भीड़ में एक अलग तरह का किरदार माना जाता है, एक अलग तरह की शख्सियत मानी जाती है उन्हें, और वो हैं भी। और टीवी पर इस बार टीवी के लिए उन्होंने जो काम किया है रूबरू रोशनी के रूप में सत्यमेव जयते के काफ़ी साल बाद, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी काम है, क्योंकि मौजूदा दौर में मुझे लगता है कि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, और स्वाति चक्रवर्ती, किरण राव, आमिर खान, ये तीनों तारीफ़ के काबिल हैं, और जब आप गुजरेंगे उन कहानियों से, जब आप गुजरेंगे उन बातचीतों से, और जब आप गुजरेंगे उन संवादों से, तो आपको एक अलग ही नज़रिया मिलेगा, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही भावुक है। जिस वक्त एक अपराधी और एक पीड़ित आमने सामने होते हैं, जिस वक्त एक अपराधी और उसके अपराध की सजा भुगतने वाले के करीबी और परिवार आमने सामने होते हैं, और उस वक्त का जो संवाद है वो आपको पूरी तरह से झकझोर करके रख देता है, और जब आप इस शॉर्ट फिल्म से गुजरेंगे तो मुझे लगता है कि एक नए नज़रिए से और एक नई अप्रोच के साथ बाहर आएंगे। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इस सीरीज़ को हॉटस्टार पर देख सकते हैं, और देखना चाहिए। आमिर खान की तारीफ़ की जानी चाहिए, स्वाति चक्रवर्ती भटकल को भी इसके लिए तारीफ़ देनी चाहिए, और किरण राव की भी तारीफ़ की जानी चाहिए कि एक बहुत ही ज़रूरी शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, या जो भी आप कह लें, आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसका निर्माण किया गया है। शुक्रिया।